समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनिता आनंद। अनिता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार नेहा, हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एज ऑलवेज वी हैव फॉर ऑल ऑफ यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, बिजनेस कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉल्स फॉर द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी to bring revolutionary changes in veterinary medicine and care.
हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग का दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड सहित पर्वतीय राज्यों में 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट।
हीट वेव स्वीप्स अक्रॉस यूरोप, सदर्न स्पेन रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस, पोर्चुगल, इटली एंड क्रोएशिया ऑन रेड अलर्ट।
और तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में शुरू।
And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global levels. Today we'll talk about International Day of Parliamentarism, International Asteroid Day and World Social Media Day. The International Day of Parliamentarism or IPU is celebrated every year on 30th of June, the date in 1889 on which IPU was founded. The day was established in 2018 through a United Nations General Assembly resolution. Neha?
जी, ऐसे समय में जब दुनिया भर में लोगों का राजनीतिक संस्थाओं से विश्वास खत्म हो रहा है और लोकतंत्र स्वयं लोक लुभावन और राष्ट्रवादी आंदोलनों से चुनौतियों का सामना कर रहा है, संसदीय लोकतंत्र के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
If a democracy is to thrive, then parliaments as the cornerstone of functioning democracies need to be strong, transparent, accountable and representative. The International Day of Parliamentarism is a time to review the progress that parliaments have made in achieving some key goals to be more representative and move with the times, including carrying out self-assessments, working to include more women and young MPs and adopting new technologies.
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव में राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों में तथा राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में संसदों की भूमिका को भी मान्यता दी है।
एंड फ्रेंड्स, डिड यू नो दैट मोस्ट पार्लियामेंट्स रिमेन मेल डोमिनेटेड एंड वुमेन एमपीज आर ऑफन अंडर रिप्रेजेंटेड ऑन डिसीजन मेकिंग बॉडीज।
जी हाँ, दुनिया भर में राष्ट्रीय और स्थानीय विधायकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, जिससे उनके राजनीतिक अधिकार और कानूनों और बजट पर उनका प्रभाव सीमित हो गया है। यूएन विमेन नीतिगत संवादों और अंतरदलीय सहयोग के माध्यम से अधिक महिला नेताओं, सहायक कानूनों और कौशल निर्माण की वकालत करता है।
Newer partnerships with groups like the Inter-Parliamentary Union, IPU, are key to these efforts. The IPU is a forum of women parliamentarians active for over 50 years, empowers women MPs to address gender imbalances and include men as allies, embodying the approach for the 2025 IPU theme, Achieving Gender Equality, Action by Action. The forum helped introduce rules requiring women's inclusion in parliamentary delegations.
जी, यूएन विमेन के प्रमुख और चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट ने खूब कहा था, मेरे लिए बेहतर लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जहां महिलाओं को न केवल वोट देने और चुनाव करने का अधिकार है बल्कि निर्वाचित होने का भी अधिकार है।
And now we go to the second topic in Dateline, and that is International Asteroid Day. This planet is 15 million years overdue for an asteroid strike like the one that killed the dinosaurs, L. Neil Smith. In December 2016, the UN General Assembly adopted a resolution declaring 30th June International Asteroid Day in order to observe each year at the international level the anniversary of the Tunguska impact over Serbia, Russian Federation on 30th of June in the year 1908 and to raise public awareness about the asteroid impact hazard.
जी आइए हम अपने श्रोताओं को बताएं कि एस्टेरॉयड प्रारंभिक और मंडल के चट्टानी वायुहीन अवशेष हैं जो लगभग 4.6 अरब साल पहले बने थे. अक्सर हम इन्हें छोटे ग्रह या ग्रहिकाएं भी कहते हैं. यह आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं और मुख्य रूप से अंतरिक्ष के विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि कई एस्टेरॉयड्स यानी शुद्ध ग्रह छोटे होते हैं. कुछ केवल कुछ मीटर चौड़े होते हैं, अन्य जैसे वेस्टा सैकड़ों किलोमीटर व्यास के हो सकते हैं.
That was interesting information. And did you know, near asteroid impacts, while rare, can cause catastrophic damage? The Chelyabinsk meteor in 2013, which exploded over Russia, had the force of 440 kilotons of TNT, injuring over 1,500 people. This highlighted our vulnerability and the urgent need for detection systems and also response strategies.
जी एस्ट्रॉयड्स को समझना ना केवल अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बल्कि ग्रहों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है. उनका अध्ययन वैज्ञानिकों को ग्रहों के निर्माण और प्रारंभिक सौर मंडल की संरक्षण के बारे में सुराग खोजने में मदद करता है. इसके अतिरिक्त कुछ एस्ट्रॉयड संभावित प्रभाव खतरा पैदा कर सकते हैं जिससे उनकी निगरानी वैश्विक प्राथमिकता बन जाती है.
And here, International Asteroid Day aims to raise public awareness about the asteroid impact hazard and to inform the public about the crisis communication actions to be taken at the global level in case of a credible near-Earth object threat. The General Assembly's decision was made based on a proposal by the Association of Space Explorers, which was endorsed by the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, that is COPUOS.
13 अप्रैल 2029 को एस्ट्रॉयड 99942 अपोफिस पृथ्वी की सतह से लगभग 32,000 किलोमीटर की दूरी पर भूमिस्थिर कक्षा के भीतर सुरक्षित रूप से गुजरेगा, जिससे ग्रह को कोई खतरा नहीं होगा. यह अत्यंत निकट दृष्टिकोण शुद्ध ग्रह को स्पष्ट रात्रि में खुली आंखों से देखा जा सकता है. यह शताब्दी में एक बार होने वाली घटना होगी और एस्ट्रॉयड्स उनके वैज्ञानिक और संसाधन मूल्य और उनके द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वव्यापी अभियान के लिए एक अनूठा अवसर देगा.
Last year, near the General Assembly declared 2029 the International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defense to take advantage of, like you mentioned, the close approach of the 99942 Apophis and raise global awareness about asteroids. This initiative aims to highlight the collaborative efforts of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space in mitigating potential hazards from near-Earth objects while also providing an opportunity for a global educational campaign. And now we go on to the third topic, that is the World Social Media Day. And I'm quoting Fionn Cotton here, who said that social media is both a dark and brilliant thing for mental health and how it is playing out for all of us, right? Observed annually on 30th of June, World Social Media Day marks a global tribute to raise the awareness of social media and its increasing presence and importance in our daily lives. It celebrates how various social media platforms have revolutionized the world, giving us an enhanced medium to connect, communicate, and also create content.
जी अनीता, विश्व सोशल मीडिया दिवस परिवारों और समुदायों के बीच डिजिटल कनेक्शन की शक्ति पर प्रकाश डालता है. साथ ही सोशल मीडिया युग द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर भी बात करता है, जहां बढ़ती संख्या में उपयोगकर्ताओं को गलत सूचना, उनकी गोपनीयता पर हमले और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को.
जी एंड नेहा, दिस इयर्स थीम फॉर वर्ल्ड सोशल मीडिया डे इज एम्पावरिंग वॉइसेस एंड बिल्डिंग कम्युनिटीज, विच एम्फसाइज द पावर सोशल मीडिया गिव्स टू यूजर्स एंड बिजनेसेस टू एको देयर ओपिनियंस एंड आल्सो मैसेजिंग एंड मेक एन इम्पैक्ट थ्रू कंटेंट बेस्ड स्टोरी टेलिंग अमंग देयर लॉयल फॉलोअर बेसेस.
जी आखिरी सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और असर को दर्शाते हैं, क्योंकि दुनिया भर में 4.9 बिलियन से अधिक लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसके उपयोग करता है. एक औसत सोशल मीडिया उपयोगकर्ता इन एप्स पर प्रतिदिन 2.5 घंटे बिताता है.
विच इज क्वाइट अ बिट. आई थिंक दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कम विद देयर ओन सेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, एस्टैब्लिशिंग द इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटी ऑन द वर्ल्ड वी करंटली लिव इन. On the one hand, the presence on these platforms, which allows us to socialize, helps foster friendships and also give a choice to, voice to the marginalized while cultivating greater awareness about several issues. On the other end of these involves major challenges related to fake news, misinformation, cyberbullying, data hacking, and also mental health concerns. Right?
जी, सोशल मीडिया किसी व्यक्ति के जीवन का मुख्य आकर्षण है या यथार्थवादी नहीं है? इस मंच पर यानी सोशल मीडिया पर आप अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहते हैं, इस बारे में सावधान रहें। ध्यान रखें कि आप इसका उपयोग अपनी बेहतरी और जानकारी के लिए करना चाहते हैं, असत्यापित जानकारी फैलाने के लिए या फिर किसी के बारे में हीन किसी को महसूस कराना, इन सब चीजों के लिए आप सोशल मीडिया का उपयोग ना करें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए।
So listeners, remember that it takes just one negative comment to ruin someone's day. But at the same time, one beautiful comment can also make someone's day. Be careful of what you choose to spread, hatred or positivity. Don't give superiority to real over the real world.
विश्व सोशल मीडिया दिवस उपयोगकर्ताओं को जागरूक, सम्मानपूर्ण और जागरूक डिजिटल नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
We go over to Agartala in a bid to make the local artisan self-reliant. The Department of Handicrafts under the Ministry of Textiles is organizing over a month-long design and development workshop in Sipahijala district of the state. Let's listen to this report.
The village of Palpara does not need any introduction as it is one such village in the state which is known for making the idols of goddess Durga. The villagers are inherently into the business of making beautifully designed idols of goddess Durga which have a huge demand across the state. After West Bengal, it is Tripura where the Durga Puja is celebrated on a large scale by the predominantly Bengali populace and even by the indigenous people from the state. An interesting aspect from the point of view of the clay that is used to make these idols is that it is procured from the surface of the ponds in the vicinity. Experts say that the clay used to make the idols is smooth and is ideal to make different types of terracotta products. The design and development workshop which is underway at Palpara specifically meant for the local terracotta artisans emphasizes on the market oriented products which have good demand in other major cities of the country which can help them become Atmanirbhar.
Jitne bhi murtiyan hai ye log purane technique se hi bana rahe hain. Hum log ka ye focus hai kya ki inko na market oriented product banaye, like pata utility products banaye. Jo kya hai ki terracotta se utility products sir bahut kuch hai, pen stand hai to fir kya hai ki flower vase hai sir aur planters. ये सब इनको ये सिखा रहे कि नए टेक्निक्स और नए डिजाइन जो मार्केट में डिमांडेबल है वो हम इनको ना सिखा रहे।
Around 30 artisans from Palpara are being imparted training in these 50 days workshop. Apart from the training, the artisans are also being given a stipend of 300 rupees on daily basis. To know more about their experiences, Akashwani spoke to some of the artisans.
Minister of Textile, Central Government, हमारे इधर में जब देखा इस क्योंकि पहले से हम लोगों का इतना मौका नहीं मिला क्योंकि government direct हमारे पास आया. इधर जो काम कर रहे उसे कैसे और आगे ले सकता है, उसे कैसे फायदा मिल जाएगा इधर का लोग का।
Such workshops to harness the local talent will certainly help the people from this northeastern state to come at par with those from the mainland India and showcase their skills in days to come. Kunal Shinde for Parikrama from Akashwani News, Agartala.
कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL ओडिशा के खदान प्रभावित क्षेत्र में सतत विकास और सामुदायिक कल्याण पर केंद्रित विभिन्न कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR गतिविधियां चला रही है। एक रिपोर्ट।
Under its Swalambi CSR project, MCL has provided sewing training to 50 women and each beneficiary trained more than 5 women from their community. One of the beneficiaries from a small village of Odisha, Prabhashini Sahu, said that through this initiative, women have become home-based entrepreneurs.
तो हम लोग अभी पहले जो नहीं था अब पैसा भी ज्यादा हो रहा है जो 200-300 पैसा कमा रहे थे अभी 4-5 हज़ार तक हो रहा है।
Another beneficiary Sukhanti Khadia said that with the help of this initiative women earn 6-7 thousand rupees by doing sewing at their homes।
मेरे गांव से कुछ महिला घर नहीं रहते थे अभी अपना अपना घर में सिलाई करते हैं वो अपना अपना रोजगार करते हैं एक महीने में 6-7 हज़ार इनकम होता है।
As per MCL this initiative has covered 50 villages and 10 gram panchayats। panchayats. A semi-industrial sewing machine was donated to each beneficiary. Sewing training schools, Silai School, has been established in each beneficiary's home. With Akshit Vaidyan from Sambalpur, Adarsh for Parikrama.
And now going back to the northeast, actually Guwahati, where the first emergency landing facility to be operational by October this year in Dibrugarh district of Assam. This 4.2-kilometer long emergency landing facility is being built on a four-lane highway stretch between Moran and Dimau. More from our correspondent.
To strengthen our national security and as part of a national plan, the central government is establishing emergency landing facilities all over the country for the Indian Air Force at every 50 to 100 kilometers of stretch. The first emergency landing facility of the entire northeastern part of India to come up at Dibrugarh district of Assam. According to official sources, this facility will be fully operational by October this year after final technical clearance. This strategic emergency landing facility project is a collaborative effort between the Indian Air Force and the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. The facility is designed to serve both military and civilian purposes. Fighter jets like Rafale, MiG, Tejas and Hercules will be able to land on this landing facility. An air traffic controller tower has also been built as part of the project. During emergencies, civilian aircraft can also utilize the facility. Under normal conditions, it will remain open for regular public transport. Two more such emergency landing facilities will be developed by the center in the state, one between Tihu and Barama and another between Nogaon and Lamding. Aminul Haq Jaddar, Akashvani News, Guwahati.
And now going over to Kolkata, for over a century, the one-horned rhinos of North Bengal have been facing a genetic crisis due to lack of diversity, resulting in serious inbreeding-related problems. In an effort to reverse this long-standing issue, the West Bengal Forest Department has reached out to wildlife experts for help. More from our correspondent.
For over a century, the one-horned rhinos of North Bengal have been facing a genetic crisis due to lack of diversity, resulting in serious inbreeding-related problems. In an effort to reverse this long-standing issue, the West Bengal Forest Department has reached out to wildlife experts for help. The Wildlife Institute of India, WII, has now stepped in to assist with the conservation of rhino populations in the Jaldapara and Gorumara National Park. Bhaskar J.V., Chief Conservator of Forest Wildlife, North Bengal, said discussions have begun with WII to develop a scientifically managed breeding plan. Through the Rhino Management Project, the goal is to increase genetic variation among the rhinos and restore their reproductive potential and overall health. According to the Forest Department, the prolonged cohabitation of rhinos from the same genetic lineage in both Jaldapara and Gorumara has led to a stagnation in gene pool diversity. As a result, these animals are now showing signs of reduced fertility and shorter lifespans. Although the average natural lifespan of the species can exceed 40 years, many rhinos in North Bengal are dying prematurely. Another significant concern is the skewed sex ratio. Female rhinos greatly outnumber males. There are also persistent difficulties in accurately identifying the gender of newborns, which hinders planned breeding efforts. The Forest Department remains hopeful that interregional breeding and a scientifically guided program under the supervision of WII will help overcome these challenges and secure a healthier future for the one-horned rhinos of North Bengal. Shushmita Mondol, Akashvani, Kolkata.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
Wimbledon 2025, the third Grand Slam of the tennis calendar, began today at the All England Club in London, and it will conclude with the men's singles final on July 13. Fresh off his maiden French Open triumph, two-time defending champion Carlos Alcaraz will be looking to defend his title against world number one Jannik Sinner and record 24-time Grand Slam winner Novak Djokovic. In some business news, the benchmark domestic equity indices took a breather today, halting their four-day gaining streak. Both the indices closed with losses of around 0.5% amidst mixed global queues and profit booking. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, shed 452 points to close at 83,606, and the National Stock Exchange Nifty 50 lost 121 points. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 96,280 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading up at 1,06,720 रुपीस पर किलोग्राम व्हेन द रिपोर्ट्स लास्ट केम इन।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मानसिक समस्याओं की आरंभिक पहचान और निदान विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस की निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति और एम्स के मनोचिकित्सा के प्रोफेसर और न्यूरो मॉड्यूलेशन और मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र के प्रभारी डॉक्टर नंद कुमार परिचर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को शुरुआती चरण में कैसे पहचाने और उनका उपचार कैसे करें और मानसिक बीमारी को रोकने के क्या सही तरीके हैं पर सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता रात 9:30 बजे कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन और व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-2342-1050 और 011-2331-4444। अब आइए बात करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानियों की और उन महान व्यक्तियों की जिनके आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इस कड़ी में आइए चलते हैं आजादी के सफर पर।
On the 30th of June 1855, the Santhal uprising began. The indigenous tribe of Santhals from the then Bengal Presidency rose up against the British East India Company and the Zamindari system. The Santhal Hul, which started 2 years before the 1857 revolt, continued till November the 10th, 1855, when martial law was declared.
Santhals fought against the unjust revenue system of permanent settlement that exploited the community, surviving on forest products and the barter system. According to the Permanent Settlement Act of 1793 by Lord Cornwallis, landlords would have perpetual and hereditary rights over the lands demarcated under their jurisdiction until and unless they were able to pay the required land revenue.
Thus, to create this new class of zamindars, the British confiscated lands from the Santhals and other tribes. The Santhals had to serve these landlords who would take away a large chunk of their agricultural produce, leaving them with almost nothing. To sustain themselves, they borrowed from the moneylenders, who would lend at exorbitant rates to an already vulnerable and impoverished group.
Santhals were forced into bonded labour and, generation after generation, cultivated land to meet the demands of the British. Many had to work in indigo plantations or for the railway constructions that the British initiated.
Four brothers of the Murmu clan, Sidhu, Kanhu, Chand and Bhairav, along with their sisters Polo and Jhano, led the uprising against the blatant exploitations of the Santhals. They organized thousands of Santhals from neighboring areas after declaring that freedom can only be won by armed war.
As the uprising gained power, the company administration sent more troops to fight Santhals, who in turn fought using their traditional weapons. The British put a prize money of 10,000 rupees for Sidhu and Kanhu, the prominent leaders of the uprising.
Santhals lost thousands of their kin and tens of villagers as the war elephants destroyed their homes. The colonizers managed to suppress the uprising and Sidhu and Kanhu were killed in action. However, the sacrifices of the Santhals were not in vain. The uprising concluded with the issuing of the Santhal Parganas Tenancy Act, which provided the people some protection from colonial exploitation. Regular police force was abolished and the village head was put in charge of maintaining peace.
On the 30th of June 1857, the Battle of Chinhut was fought between British forces and Indian independence activists during the First War of Indian Independence at Ismail Ganj near Chinhut, Awadh. The British were led by the Chief Commissioner of Awadh, Henry Lawrence, and the Indian activists were led by Barkat Ahmed, an ex-officer of the British Army. The Battle of Chinhut was one of the few major victories which Indian forces obtained in open combat with the British during the uprising.
The British force was greatly outnumbered by the Indian Independence Army by about 6,000 to 600. The Indians were in well-prepared positions behind stone walls in the village and inflicted heavy casualties on the British forces. The regiment's acting commanding officer, Lieutenant Colonel William Case, was killed, as were several officers. Many of the British soldiers, especially Indian artillery men, also joined the Indian forces, overturning their guns and cutting the traces on the horses. The British were forced to retreat to the British residency at Lucknow.
आज पुण्यतिथि है दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक भी थे।
He is also known as the Grand Old Man of India or the unofficial ambassador of India. He was an activist, political leader, merchant, scholar and also a writer. He was one of the founding members of the Indian National Congress and served it as its second, ninth and 22nd president. He was the Diwan of Baroda from 1874 before moving to England, where he was a Liberal Party member of Parliament in the British House of Commons. He was the first person of Indian descent to be a British MP, and his book, Poverty and Un-British Rule in India, brought attention to his theory of Indian wealth drain into Britain.
आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि और कथाकार, अपने जनवादी विचारों के लिए प्रसिद्ध और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन का आज जन्मदिन है। नागार्जुन अपनी कविता अकाल और उसके बाद में कुछ यूं लिखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। नागार्जुन जन कवि कहे जाते हैं। उनके काव्य की अंतर्वस्तु का दायरा बृहत है। उनके पास कविता कहने के हजार ढंग थे। उनकी भाषा में भी अपना अलग तेवर था। नागार्जुन ने मैथिली, संस्कृत और हिंदी में काव्य रचना के अलावा उपन्यास, कहानी, निबंध भी लिखे हैं।
Today is also the death anniversary of Chester Burton Atkins, or Chet Atkins, the Mr. Guitar or the Country Gentleman, the American musician who, along with Owen Bradley and Bob Ferguson, helped create the Nashville sound, the country music style, which expanded its appeal to adult pop music fans. He was primarily a guitarist, but also played mandolin, fiddle, banjo and ukulele, and occasionally sang. I'm playing a snippet from one of his performances.
आज महाराजा गुलाब सिंह की पुण्यतिथि है। उन्हें महान योद्धा और प्रशासक, जिन्हें जम्मू और कश्मीर रियासत के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। महाराजा गुलाब सिंह का जन्म 1792 में जम्मू क्षेत्र के डोगरा राजवंश में हुआ था। बहादुरी, कूटनीति और नेतृत्व के लिए वह युवावस्था से ही प्रसिद्ध हो गए थे।
Today is also the death anniversary of Kalyanji Virji Shah of the Kalyanji Anandji duo. He and his brother Anand Virji Shah have been famous Indian film musicians and also won the 1975 Filmfare Award for Best Music Director for Kora Kagaz. He is a recipient of the Civilian Honour of Padma Shri, India's fourth highest civilian honour. We are playing a medley by them.
जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे,
ओ मेरे मितवा, ओ मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा।
Born on this day is also Syed Akhtar Mirza, the Indian screenwriter, director of Hindi films and television. He is the maker of notable parallel films such as Mohan Joshi Haziro, Albert Pinto Ko Gussa Kyun Aata Hai, Saleem Langre Pe, Matro and Naseem. A snippet from Mohan Joshi Haziro.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अनीता आनंद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इट।
नमस्कार।